ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच, सम्यक् व्यवसिता बुद्धि तवदाचरसि सत्तम। वासुदेव कथायां ते जज्जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषांस्तेन पुनाति। वक्तारं प्रेक्षकं श्रोतिं तत्पाद सलिलं यथ। एक एक श्लोक पढ़िए।
बुद्धि
महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर और उनकी श्रवण की उत्कंठा को देखकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हैं और वे अब महाराज परीक्षित का यश गा रहे हैं, महाराज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री शुकावाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सप्तम, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ आपकी बुद्धि सम्यक निश्चयवती है, आपकी बुद्धि ने अच्छा निर्णय किया है, पूर्ण रूप से बहुत सुंदर बुद्धि है, व्यवस्थिता बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो आपका निर्णय बहुत अच्छा हुआ है। जब जिस बुद्धि से आपकी कृष्ण कथा में रति हो गई है और नैष्ठिकी रति, निष्ठा का अर्थ है जो किसी भी विघ्न बाधा से कभी त्रस्त से मस्त न हो, उसको नैष्ठिकी बुद्धि कहते हैं। जब जाता जिस बुद्धि से आपकी वासुदेव की कथा में नैष्ठिकी रति हो गई है, धन्य है आप। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए थे, पहला प्रश्न रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम शंकरस्तया देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम बिना, जब आप वसुदेव जी की भार्या रोहिणी की संतानों को गिना रहे थे तो उसमें आपने बलराम जी का नाम रखा और ये भी कहा कि ये देवकी के पुत्र हैं। आप जब देवकी के पुत्रों को गिना रहे थे तो उसमें भी बलराम जी का नाम ली, तो ये कहीं शरीर से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहात ब्रजम गतः, श्री भगवान जो ब्रह्मा और शिव के भी शासक हैं उन्हें तो कोई भय नहीं था, फिर पिता का वसुदेव जी का स्नेहमय घर छोड़ करके ब्रज में क्यों आए। बहुत सुंदर नगर में जन्म हुआ मथुरा में, तो फिर वे वन में क्यों चले गए, ब्रज में क्यों गए। और ब्रज में उन्होंने कहाँ कहाँ निवास किए। सबसे पहले श्री कृष्ण महावन में गए, बृहद वन, और बाद में वृंदावन आ गए और भी कई जगह गए, जैसे काम वन और कई वनों में। जमुना जी के पश्चिम किनारे पांच वन हैं, भंडीर वन, भद्र वन, लौह वन, महावन, बेल वन और पूर्वी तट पर पांच वन है और पश्चिमी तट पर सात, सब मिलकर के 12 वन है प्रमुख। इन 12 वनों में भगवान कृष्ण ने निवास किया भिन्न भिन्न समय पर। जिस समय वे गोवर्धन धारण किए उस समय वृंदावन में रह रहे थे। वृंदावन गोवर्धन वृंदावन में ही है। गोवर्धन बरसाना नंदगांव और खैरा वगैरह ये सभी वृंदावन में ही है। अब तो वृंदावन नाम से एक टाउन हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है तो लोग इसी को वृंदावन समझते हैं। लेकिन ये वृंदावन नंदगांव तक फैला था। अब तो सब जगह के वृक्ष कट गए हैं, वन नहीं है पर स्मृति मात्र है। जमुना जी सभी जगह बहती थी। पहले जमुना जी कोसी से नंदगांव में आती थी, नंदगांव से बरसाने, बरसाने से गोवर्धन होते हुए बहती थी। गोवर्धन के चरण कमल को पखारती थी जमुना जी। इसके बाद वे आई खैरा होते हुए, खिदिर बन होते हुए वृंदावन, और वृंदावन के बाद ये मथुरा में आती है। जमुना जी सब जगह है। कृष्ण जहां जहां लीला किए सब जगह बहती है। नारायणियम में एक भक्त ने कहा है कि जमुना जी राघवती प्रेमिका के समान है। उनको कृष्ण से राग है, अतः जैसे प्रेमिका राघवती प्रेमिका अपने प्रेमी के पीछे लगी रहती है, ऐसे ही जमुना जी सब जगह ब्रज में है। ये अपने प्रियतम के लीला में सहयोग देती है। अभी 500 वर्ष पहले जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तब जमुना जी का वही रूट था, बहती थी, कोसी होते हुए आती थी। नंदगांव बरसाने, तब बरसाने के बाद खिदिर बन का रास्ता था। वहां से वे गिरिराज जी के तलहटी में बहती थी। बहुत सुंदर पर्वत गिरिराज जी है, उसमें भगवान की गौएं चरती हैं। राधा कुंड, कृष्ण कुंड गिरिराज जी के नेत्र जैसे हैं। ये पर्वत गिरिराज जी यही वृंदावन का केंद्र है। कृष्ण यही सबसे मधुर लीलाएं किए। गिरिराज जी वृंदावन से अलग नहीं है, सेंटर में है। जय गिरिराज की जय। तो ब्रज में कृष्ण क्यों आए, इसका भी उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। ब्रज में आए गिरिराज जी के तलहटी में पर्वत में खेलने के लिए, और माखन लूटने के लिए, खाने के लिए। जब भगवान की प्रेमिकाएं आती थी गोवर्धन घाटी में, पार करती थी गोवर्धन पर्वत को, उसको दान घाटी कहते हैं, वहां भगवान दान लेते थे। गोपियां देती नहीं थी, पर बहुत छीना झपटी झकझोर करना, गाली देना गोपियां करते थे, फिर भी कृष्ण उनका दही और माखन दूध पीते थे। रासलीला भगवान ने रचाया गोवर्धन तलहटी में, उस समय जमुना जी सट करके बहती थी गोवर्धन से, खास करके गोचारण लीला और रास लीला, गोप कुमारों के साथ खेलना, ये सारी क्रीड़ाएं गिरिराज जी के संपर्क निकट में संपन्न हुई, इसीलिए गिरिराज जी की इतनी महिमा है। और जब गोपों को भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा मत कीजिए, इंद्र से की पूजा से क्या लाभ, पर्वत की पूजा कीजिए, यही गिरिराज हम सब लोगों को घास देते हैं, पानी देते हैं, और हमारी गौओं के लिए और क्या चाहिए, तीर्ण और सलिल घास और पानी चाहिए, और घास पानी सब गिरिराज से मिलता है। नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम लोग प्रति वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया नहीं, वर्षा होती है जीवों के कर्म फल के अनुसार, उनके दृष्ट के अनुसार, इंद्र को कुछ नहीं करता है। भगवान ने तर्क दिया कि यदि पूजा करने से इंद्र वर्षा करते तो बताइए पिताजी, बड़े बड़े वृक्ष वन में रहते हैं, वे इंद्र की कब पूजा किए, बड़े बड़े वृक्ष तो बहुत पानी पीते हैं, उनको बहुत पानी चाहिए, फिर भी उनको पानी मिल जाता है, तो इंद्र की पूजा करके पाए नहीं, वर्षा होती है अगर इंद्र नामक देवता वर्षा करता तो मैं मानता हूं समुद्र में क्यों वर्षा करता है, जहां पानी भरा हुआ है तो वहां क्यों वर्षा करता है, क्या जरूरत है, और जहां पानी की जरूरत नहीं है, जरूरत है काफी, वहाँ पानी नहीं होता है। राजस्थान में कोई इंद्र का भक्त नहीं है क्या, क्यों नहीं वर्षा होती, ये सब परमेश्वर की सृष्टि है, वर्षा काल में वर्षा होती है, इंद्र की पूजा से वर्षा नहीं होती है। प्रत्यक्ष देवता हमारे गिरिराज हैं, गऊ को घास देते हैं, पानी देते हैं और अनेक प्रकार के कंद मूल फल देते हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा की जाए और गऊ की पूजा की जाए और स्वर्ग में रहने वाले देवों से, देवताओं से, हमारे पृथ्वी पर रहने वाले विप्र यही वास्तविक देवता हैं। अतः गोवर्धन, गौएं और ब्राह्मण, इन तीन की पूजा की जाए। और गिरिराज जी को बृहद भोग लगाया जाए, अनेक पकवान बना करके अनेक प्रकार से बना पूजा किया जाए, भोग लगाया जाए। गिरिराज जी सबको आशीर्वाद देंगे। तो कुछ गोपों ने कहा कि गिरिराज क्या खाएंगे, ताकि हाँ ये सबसे बड़े देवता हैं, क्यों नहीं खाएंगे, आप लोग भोग अर्पण करेंगे तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष खाएंगे प्रकट होकर। जब गोपों ने पूजा किया, परिक्रमा किया और गिरिराज जी को भोग लगाया, तो भगवान कृष्ण स्वयं ही पर्वत के आकार में प्रकट होकर के चार भुजा से और गिरिराज जी को अर्पण किए गए सारे नैवेद्य को खाए, चार भुजा से खा रहे थे। बड़े बहुत बहुत दूर से भोग लगाया गया, कोई कोई गोपी बरसाने से भोग लगा रही थी, नंदगांव से भोग लगा रही, इतनी दूरी से, पर सब जगह से गिरिराज जी उठा करके खाते थे। टोकरी भरा हुआ खाजा, घड़े में खीर लेकर के पीते थे। पर्वत के आकार में थे, तब भगवान ने कहा, दिखा करके, देखिए देखिए गिरिराज जी प्रकट हैं, इनको सब लोग प्रणाम कीजिए। और जितने प्रकार के विघ्न हम लोगों के जीवन में आएंगे, सबका ये विनाश करते हैं। और जो लोग दुष्ट हैं या खराब कर्म किए हैं, तो उनको ये सांप के रूप में, बाघ के रूप में खाते हैं, डसते हैं। गिरिराज में सर्प भी रहते हैं, बाघ रहते हैं, तो वे गिरिराज जी का विरोध करने वाले को समाप्त कर देते हैं, स्वयं प्रणाम कर रहे थे भगवान और नंद बाबा को प्रणाम करा रहे, प्रणाम करो बाबा, सब लोग आशीर्वाद मांगो। तो नंद बाबा तो यही आशीर्वाद मांगे, कृष्ण बलराम सुखी रहे, हे गिरिराज बाबा। स्वयं कृष्ण है, अद्भुत लीला है, अपने पिता से प्रणाम करवा रहे हैं। सब लोग प्रणाम किए और बाद में प्रसाद खाए गिरिराज जी का। यह खबर पहुंची स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा में कि वो गोपों ने इस साल पूजा नहीं किया और सब लोग जयकार कर रहे हैं पर्वत के, गोपों की ऐसी बुद्धि हो गई तो देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। अंततः यह हित तो ही नहीं है, बुद्धि कहाँ है। तो ये आए देखने के लिए तो और जय जयकार हो रहा था पूजा के साथ। तो देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए, अति क्रोध, इतने बड़े देवता होकर के इतना क्रोध, इन गोपों को मैं सिखा दूंगा। उनको ये पता चल गया कि सारा काम हुआ है, मेरी पूजा बंद हुई है और पहाड़ की पूजा कर रहे हैं कृष्ण नामक गोप के कहने से। ये छोटा बच्चा बहुत बोलता है, यही हमारी पूजा बंद किया। तो अब मैं सारे गोपों के धन को, उनकी गऊ को नष्ट कर दूंगा, इनका अभिमान तोड़ दूंगा। गोपों को बहुत अभिमान हो गया है, कुछ गऊएं बढ़ गई हैं इसलिए इनका अभिमान बढ़ गया है। तो सारी गऊओं को, गोपों को प्रलयकालीन जल से डुबा करके मार दूंगा। और वे तुरंत आज्ञा दिए प्रलय करने वाले मेघों को, जो बंदी थे प्रलय काल नहीं खोलते हैं। ये मेघ इंद्र का आदेश पा करके आए और बहुत वर्षा करने लगे, ओले बरसने लगे, बहुत जोर की आंधी चलने लगी, बादल कड़क, बादल में बिजली कड़कने लगी, चमचम बिजली चमक रही थी, बीच बीच में वज्रपात हो रहा था, सब जगह पानी भर गया। दिवाली के दूसरे दिन की घटना है, भोर जाड़ा में शीत छा गया, सब गौ में थरथर कांपने लगे, गोपियां गोप सभी कांपने लगे, ओले की वर्षा हो रही थी। तो कांपते हुए वे लोग भगवान की शरण लिए, सब लोग नंद बाबा आदि सब कहने लगे, हे कृष्ण, हम तुम्हारे कहने से देवता की पूजा रोके हैं, लगता है देवता ही रंज होकर के इतनी वर्षा कर रहा है, असमय में वर्षा करना और वो भी प्रलय जैसा जल, यह केवल इंद्र के कोप का कारण है। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए, हंस करके बोले। और भगवान ने मन में विचार किया कि मैं उपाय करूंगा, इंद्र को जो करना है वो करे, लेकिन हमारा जो उपाय है गोपाय आत्मयोग है ना, मैं अपने योग से अपनी शक्ति से आप सबकी रक्षा करूंगा। ऐसा कह करके इस विशाल पर्वत को भगवान ने बाएं हाथ से उखाड़ा बाएं हाथ से उखाड़ करके उसे अपने बाई भुजा में ही कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया। जो लोग शीत से बहुत दुखी थे, आंधी से भगवान ने इशारा किया, आप सब लोग अपने अपने गऊओं के साथ, अपने घर के सब सामान के साथ, बच्चे और वृद्ध के समान साथ आ जाइए इस गर्त में, गोवर्धन पर्वत के नीचे। बहुत विशाल जगह है, सब लोग आट जाएंगे। और आप इसकी चिंता मत कीजिए कि ये पर्वत हमारे हाथ से गिर जाएगा, यह गिरेगा नहीं। तो तृतीया के दिन, दिवाली के बाद तृतीया से भगवान ने गोवर्धन धारण किया, तृतीया से नवमी तक ये धारण किए रहे। बहुत आश्चर्य में लोग थे। तो गोपों की ये भावना थी कि यह पर्वत की ही कोई विशेषता है, इस बच्चे में क्या दम है। और इंद्र सोच रहे थे कि इतना ढीठ लड़का है तो इसकी भुजा दुख जाएगी, इसका पैर दुख जाएगा, यह अवश्य पर्वत को पटक देगा, इसी में सब नीचे दब करके मर जाएंगे। सारी गौएं गोप और गोपी सब पर्वत के नीचे थे, बहुत आराम से थे, विशेष करके गोपियों को एक अवसर मिला श्री कृष्ण को देखने का। अनवरत 7 दिन उन्होंने देखा, उनका मुख निहारा, तो ये सुख था। और श्री कृष्ण 7 दिन खाए पिए नहीं, नींद नहीं आई, भगवान सोए नहीं, हाथ बदले नहीं कि बायां से दायां कर लें। बिना खाए पिए, बिना आराम किए पर्वत को उठाए रखे। गिरिराज जी बहुत सुखी थे, भगवान के हस्त कमल का स्पर्श पा करके वे पूरा हल्के हो गए, फूल की तरह हल्के हो गए। कृष्ण पर कोई भार नहीं था, वास्तव में गिरिराज तो उनका स्वरूप ही है। बहुत उत्सव चल रहा था गोवर्धन पर्वत के नीचे, सब गोपी गोप नाच रहे थे, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और जब 7 दिन 7 रात वर्षा करके इंद्र देखे ये पर्वत को गिराएगा नहीं, तो समझ गए कि ये प्रभु है, भगवान है। और तब मेघों को अपने आप मना किए, अब रुक जाओ, वर्षा मत करो। आंधी रुक गई, मधुगण रुक गए। जब बच्चों ने कहा कृष्ण अब आंधी रुक गई है, पानी घट गया है, पानी जो बहुत वर्षा हुई थी अब पानी सब नदियों में बह गया है, तब भगवान ने कहा कि हे गोपो, हे गोपियों, आप धीरे धीरे निकल जाइए। गोवर्धन के गर्त से तो सभी कृष्ण को देखते हुए निकल गए। भगवान ने पूछा, सब जगह सब लोग निकल गए, कोई बचा नहीं, कोई बकरी, कोई गाय, कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई माताजी, कोई रुकी नहीं, गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं रह गई, सब लोग निकल गए। जब सब लोग निकल गए तब भगवान पुनः उस पर्वत को उसी स्थान पर रख दिए। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं उपदेशामृत में कि भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने हस्त कमल पर धारण किए थे, इस कारण से गोवर्धन बहुत श्रेष्ठ है संपूर्ण ब्रज में। यद्यपि भगवान की जन्मभूमि मथुरा है, महिमामय है भगवान का जन्म लेने के कारण, लेकिन गोवर्धन पर्वत उससे भी अधिक धन्य है, क्योंकि 7 दिन भगवान के हाथ पर रहा। गोवर्धन पर्वत में भी राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रज भूमि में आ गए भगवान यही सब लीला करने के लिए, रास लीला, गोचार, सखाओं के साथ खेल कूद करना, इसी लीला के लिए आ गए। मथुरा में क्या करते, वहां तो दूध दही आदि मिलना कठिन था, ब्रज में पर्याप्त दूध, दही, घी, माखन सब सुलभ था। भगवान को अपने गोलोक में, वैकुंठ में वह आनंद नहीं मिला जो सुख है ब्रज में मिला। इसीलिए वे मथुरा छोड़ करके आ गए ब्रज में। इसके बाद महाराज परीक्षित पूछे हैं, ब्रजे वसन किम करो, ब्रज में रहते हुए वे क्या क्या किए, और मधुपुरियाम से केशव, और केशव श्री कृष्ण मधुपुरी में क्या किए। उन्होंने अपनी माता का भाई कंस का वध क्यों किया, और भी अपने हाथ से अर्धा साक्षा और देहम मानस मास अपना नराकृति शरीर ग्रहण करके प्रकट करके भगवान कितने वर्ष द्वारका में रहे और जादुओं के साथ रहे। और अंतिम प्रश्न था कि पत्नियां कत्य भवन प्रभु, प्रभु की पत्नियां कितनी थी, उनके साथ भगवान ने कैसे कैसे विवाह किया। ये तद अन्य तो सर्वम में मुने कृष्ण विचेषित, यह जो मैं पूछा हूं और जो मैं अज्ञान के कारण नहीं पूछा हूं, उन सारी कृष्ण लीलाओं को कृष्ण विचेषित आप कृपा करके मुझसे कहिए विस्तार से। यद्यपि महाराज की आयु सीमित थी, अब केवल 4 दिन जीना था, लेकिन कह रहे हैं कि जो भी भगवान लीला किए हैं, जो आप जानते हैं, उन सबको आप कहिए। आप सब जानते हैं क्योंकि सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। और मैं श्रद्धालु, मेरी श्रद्धा है, मुझे विश्वास है भगवान कृष्ण की लीलाओं पर। ये सब लीला किए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मैं श्रद्धालु हूँ, सुनना चाहता हूँ, और आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसलिए जो मैं पूछा हूँ वो भी कहिए, और जो नहीं पूछा हूँ वो भी कहिए। यद्यपि महाराज परीक्षित 4 दिन में क्या क्या सुनते, संभव नहीं था सुनना पूरा, और सुखदेव गोस्वामी के लिए बोलना भी संभव नहीं था। फिर भी राजर्षि परीक्षित की लालसा है कृष्ण कथा सुनने। यहाँ तक कहे कि हमको भूख प्यास नहीं है, बाधित नहीं कर रहे हैं, आप एक क्षण भी कथा को रोकिए मत, आपके मुख चंद्र से झरते हुए अमृत को मैं पी रहा हूं, मुझे कोई थकावट नहीं है। नैषात दुःसाहस स्वनम त्यक्तोद्म पिबाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजस्योतम हरि कथा। हरि कथा, कृष्ण कथा ही अमृत है, मैं इस अमृत को पी रहा हूं, इसलिए मुझे भूख प्यास नहीं, भूख प्यास बाधा नहीं दे रही, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। आप कहिए। तो ये बातें सुन करके सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, और महाराज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे पहले राजर्षि सप्तम है, राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित ने मुनि सप्तम कहा था, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी। मुनि का अर्थ है मौन रहने वाला, आप मौन रहते हैं, लेकिन कृष्ण लीला का मनन करते रहते हैं। मुनय मननशीला, जो मन में शुभ विषय को सबसे अधिक सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं को सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, इसलिए आप मुनि श्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी ने और कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कृष्ण लीला में इतने आसक्त थे कि केवल श्रीमद् भागवतम पढ़े, और निरंतर चिंतन करते रहते थे कृष्ण का, इसलिए उनको राजर्षि परीक्षित ने मुनि सप्तम कहा है, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। यह संवाद है मुनि सप्तम के बीच और राजर्षि सप्तम के बीच, राजर्षि श्रेष्ठ। श्रील प्रभुपाद जी इसी शब्द पर प्रकट लिखे हैं, यही कर्तव्य है राजर्षियों का, क्योंकि राजर्षि गण ही इस दिव्य विज्ञान को जानते सुनते थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि समस्त सरकारी लोगों का एक कर्तव्य है कि वे श्रीमद् भागवतम सुने, कीर्तन करें। जब श्रील प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर थे तो वे श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलना चाहते थे। मिलने के लिए सब तैयारी हो गई थी पर किसी कारण से नहीं मिल पाए, पर वे दिखे थे 10 पॉइंट क्या क्या बात करनी। तो उसमें से एक पॉइंट था कि सभी सांसद संसद चालू होने से पहले 15 मिनट कीर्तन करें। और संसद समाप्त होने पर भी 15 मिनट कीर्तन करें। ये प्रभुपाद जी का विचार था। उसके पहले प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वह पत्र अभी भी है छपा हुआ। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, पंडित जी आप अब बहुत राजनीति कर लिए, आप आइए वृंदावन, अब कृष्ण की भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। पंडित जी ने स्वीकार किया था कि आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, मैं आऊंगा, परंतु फिर भी वे व्यस्त रहे, आ नहीं पाए। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि सभी लोग भगवान से जुड़े, भगवान का भगवान की कथा सुने और भगवान के बारे में आपस में चर्चा करें, विशेष करके भगवद गीता से। इससे लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब देश का प्रधान भक्त होता है तो सभी लोग उसी का अनुकरण करते हैं। किसी भी समाज का जो नायक है उसे चरित्रवान होना चाहिए, भगवान की भक्ति से पूर्ण होना चाहिए, तब जनता भी भक्ति करेगी। इसीलिए ये भक्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सब जगह प्रचार करें, सब जगह कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो, भगवान का नाम हो, विधानसभाओं में, संसद में और अपने गांव या नगर में सब जगह, पृथ्वी पे आश्रित नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है ये मोर नाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु का देश है, जितना पृथ्वी पर गांव और नगर है सब जगह मेरा नाम फैलना चाहिए। पृथ्वी के आछे जत नगर अतिग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोर नाम। भगवान चैतन्य महाप्रभु के 500 बाद, उनके लीला संवरण के 500 बाद श्रील प्रभुपाद जी के प्रयत्न से या कार्य देखा गया सब जगह प्रचार हुआ है। यहां तक कि पृथ्वी में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब जगह भगवान के नाम का प्रसार है। एक भक्त को अपने शिष्य को जिसका नाम भगवत दर्शन दास है, प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में यह कहे कि मैं शहरों में प्रचार किया, अब गांव में प्रचार करो, सब गांव में मेरा एक कृष्ण आंदोलन फैलना चाहिए। इस समय संसार का पर्यावरण बड़ा दूषित है और दूषित होता जा रहा है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं इस बाह्य पर्यावरण को शुद्ध करने का। हवा दूषित है, पानी दूषित है, पृथ्वी का अन्न दूषित है, तो आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? मनुष्य की शुद्धि हो सकती है यदि वह अच्छी बातें सुने, खास करके ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में सुने। सबसे बड़ी दुख की बात है कि ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। भगवान ने स्वयं गीता में 16वें अध्याय में कहा है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, असुर और दैव। तो दैव का वर्णन तो मैं विस्तार से किया, अब तुम असुरों का वर्णन सुनो। असुरों के बारे में भगवान कहते हैं कि जो असुर होते हैं वो निवृत्ति प्रवृत्ति चार निवृत्ति चार न जना विदुरासुर। आसुरी गुण वाले मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए इसको नहीं जानते हैं। न सत्यम तेष्ट सुविद्यते, उनमें न आचार होता है, न व्यवहार शुद्ध होता है, न सत्य। असत्यम ते अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम। और वे आपस में बोलते हैं यह संसार असत्य है, यह सत्ताहीन है, कुछ है नहीं। अप्रतिष्ठन ये कहीं है नहीं, जैसे सपना में देखते हो नगर, गांव, मनुष्य, पर जगने के बाद कुछ नहीं रहता, ऐसे कुछ नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठन थे जगत राहु रनीश्वरम। और धर्म अधर्म को देखने वाला, कर्म फल देने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर कर्म फल देने वाला है, पाप और पुण्य देखने वाला है, लेकिन ये लोग कहते हैं कहीं ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर की कल्पना लोगों ने केवल की है, स्वयं ईश्वर बोल रहा है। गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ऐसे असुर लोग बोलते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम तो जगत आरूंग अनिश्वर, जगत अनिश्वर है। इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई विधान बनाने वाला नहीं। इसलिए जिसके मन में जो आवे वो करो। आप परस्पर समझौता है कि मन्नत काम है तो काम। ये संसार किसी के सहयोग से, किसी के व्यवस्था से नहीं बना है, वास्तव में है ही नहीं। असत्यम और अप्रतिष्ठित जगत है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि तो होती है, मनुष्य से मनुष्य जन्म लेता है, तो कहते नहीं, काम ही इसमें कारण है। स्त्री पुरुष का संयोग होता है, उससे बच्चे हो जाते हैं, इसमें ईश्वर क्या करता है। कि मन्यत काम है तो कम, काम हेतु है, काम वासना से स्त्री पुरुष परस्पर मिलते हैं, या गाय सांड मिलते हैं, सृष्टि हो जाती है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। न सृष्टि करता है, न इस जगत की कोई व्यवस्था है, अच्छा बुरा देखने वाला कोई नहीं है, दंड दाता नहीं है, कर्म फल दाता नहीं। इस तरह से ईश्वर के विरुद्ध बोलना इस मानव का अशुभ मानव का स्वभाव होता है। कुछ भी ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं महाज्ञानी जैसा। अरे भाई, ईश्वर को कौन देखा है? कौन स्वर्ग जाता है? स्वर्ग है ही नहीं, नरक भी नहीं है, ये सब कल्पना है। शास्त्र को नहीं मानते हैं। कहते हैं ये ब्राह्मणों ने लिख दिया है, और कोई सत्य नहीं है। गीता में भगवान बोल रहे हैं, स्वयं कहते हैं कि इस तरह से लोग बोलते हैं, एतम दृष्टि अवस्तव्य नष्टात्मा प्रबुद्ध है। इस प्रकार के अज्ञान में जकड़े रहते हैं, एतम दृष्टि अवस्तव्य। अशुद्ध लोग इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान में रहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अगर कोई ईश्वर है तो मैं हूं। इस प्रकार की दृष्टि घोर अज्ञानमयी है, और इस अज्ञान में लोग बोलते रहते हैं, बोलते ही नहीं है, पुस्तक भी छापते हैं, पुस्तक बांटते हैं। हा 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 करते हैं। ये ईश्वर को मानने वाले कितने बेवकूफ हैं बताओ। मंदिर में ईश्वर को कैद कर लिए, और ईश्वर के बहाने भोग लगा लगा करके स्वयं खाते हैं, इस प्रकार की गलत बात बोला करते हैं असुर लोग। ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का कोई रूप नहीं है तो कैसे उसकी मूर्ति बनेगी। हा 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 खूब हंसते हैं, इस तरह से पाखंड चलता है। इसलिए ईश्वर के विषय में मत सोचो, और बस कामों को भोग परमा है तावत स्थित है। काम भोग अपनी इच्छा के अनुसार भोग करो, संसार में बस यही सार है। एतावत इति निश्चिता, यही पुरुषार्थ है। खूब भोग भोगो, जब संसार असत्य है तो भोग कैसे भोगो, भोग भी असत्य हुआ नहीं। लेकिन ऐसे बोलते हैं केवल भोग भोगो, केवल मजा लो सर, मजा लेने के लिए संसार है। और कुछ सत्य नहीं है, सत्य है इच्छा के अनुसार विषयों को भोगना, खूब खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो, स्त्री संग करो और इस प्रकार आनंद में रहो। ये असुर का विचार है। सारे मनुष्य इस समय पृथ्वी में फैले हुए हैं, असुरों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति कम हो। लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें कम से कम एक अवधि तक, 5 बरस से लेकर के 25 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करें, और गृहस्थ का जो धर्म है वो निभाएं। गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म और सन्यासी का धर्म, ये सब भगवान ने निश्चित किया है। कितना सुंदर समाज हो जाएगा यदि सभी अपने धर्म का पालन करें। गृहस्थ अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे, कभी भी परिस्त्री के प्रति कुदृष्टि न डाले। अगर ऐसा हो जाएगा तो संसार से व्यभिचार समाप्त हो जाएगा। व्यभिचार यही तो बहुत बड़ा दुख का कारण है। मांसाहार, मांस का आहार करना है। यदि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे व्यक्ति तो अपने आप जीवों की हिंसा नहीं होगी, पशुओं की हिंसा रुक जाएगी। यदि एक व्रत ले ले व्यक्ति व्यक्ति सब लोग की, मैं मांस नहीं खाऊंगा, तब पशुओं की हत्या नहीं होगी। पशुओं में भी बहुत उपयोगी पशु सारे मानव के लिए, गो माता उसकी तो हत्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक दुर्भाग्य है मानव जाति का कि अशुद्ध बन गया है और सब जगह लोग इसका प्रचार करते हैं कि मांस खाया जा सकता है। कुछ लोग तो इतना अब तक कहते हैं गोमांस खाया जा सकता है। एक बार मैं न्यूज पेपर में पढ़ा था 2014 में एक व्यक्ति बोल रहा था, अखबार में छपा था कि एक भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर हो गया है उसने कहा था, उसका वाक्य निकला था, मैं गोमांस खाता हूं और खाऊंगा, कौन है जो मुझे रोकेगा। इस तरह का दुर्विचार, इस तरह का कंडम विचार यदि प्रधान व्यक्ति में होता है तो कैसे देश सुधरेगा। बहुत वर्षों के बाद, स्वतंत्र भारत होने के बाद प्रथम बार गोरक्षा का अभियान विचार चला है। पर फिर भी इसके बहुत विरोधी लोग हैं। वास्तव में छाया जगतो हिता, जगत के अहित अशुद्ध लोग जगत का समस्त जीवों का नाश चाहते हैं। छाया प्रबोध की उग्र कर्म आरम उग्र कर्म करते हैं और जगत के नाश के लिए, सभी मनुष्यों के विनाश के लिए तुले हुए हैं। यह केवल संभव है यदि कृष्ण का प्रचार हो, यदि हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार हो, तो सब लोग चार नियमों का पालन करें तो पशु वध रुक जाएगा, शराब खाना बंद हो जाएगा, व्यभिचार बंद हो जाएगा। जब संसार में सब जगह शांति फैलेगी, तो श्रीमद् भागवतम समस्त मनुष्यों को सुखी करने के लिए है, सबका हित करने के लिए है। बिना कृष्ण से जुड़े कोई सुखी हो नहीं सकता। इसीलिए हम भक्तों का एक कर्तव्य है कि अपनी जितनी पहुंच हो, जितनी शक्ति हो, उससे भगवान के नाम का प्रचार करें। उससे प्रचार करने से हमारी भी शुद्धि होगी। जैसे गंगा जी तीनों जगत में बहती है, ऊपर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में, सब जगह सभी जीवों को पवित्र करती है। ऐसे कृष्ण कथा के विषय में कोई पूछे तो भी पवित्र होता है और जो वक्ता प्रश्न का उत्तर दे वो पवित्र होता है और प्लस सारी जनता भी पवित्र होती है। जैसे भगवान का चरणोदक मंदिर में छिड़का जाता है तो छिड़कने वाला पुजारी वो तो पवित्र होता ही है। जिस पर जल डाल रहा है, छिड़क रहा है वो पवित्र होता है, और आरती में खड़े लोग आसपास रहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। इस तरह से कृष्ण कथा का प्रचार करने वाला वक्ता, पूछने वाला और श्रोता सभी शुद्ध हो जाते हैं। यदि अधिक बात ज्ञात नहीं है कृष्ण के विषय में तो भगवान के नाम को गाना चाहिए, बोलना चाहिए। अकेले भी व्यक्ति कर सकता है प्रचार, यदि दो चार साथी मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। सब जगह गाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र फैले, सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा। जय श्री लक्ष्मी।